एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार। साहित्य की गहराइयों में उतरने वाले हमारे सफर में आज हम टोनी मॉरिसन के एक बहुत ही पेचीदा और शक्तिशाली उपन्यास पैराडाइज पर बात करेंगे।
हाँ, टोनी मॉरिसन, नोबेल पुरस्कार विजेता, पुलित्जर विजेता, अमरीकी साहित्य की क्या जबरदस्त आवाज थी वो।
बिल्कुल। और उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के अनुभवों को, खासकर अश्वेत महिलाओं की वो कहानियां जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं, उन्हें बड़े दिल से अपने लेखन में जगह दी।
और क्या कमाल का लिखा है, उनकी भाषा में एक अलग ही जादू है, काव्यात्मकता है, और कहानी कहने का ढंग भी सीधा नहीं होता, कई परतें होती हैं। वो इतिहास, मिथक, रोजमर्रा की जिंदगी, सब कुछ इतनी खूबसूरती से बुन देती है।
और पैराडाइज जो 1997 में आया, वो उनकी मशहूर त्रयी बिलव्ड और जैज के बाद की आखिरी कड़ी मानी जाती है।
सही कहा। और ये दैवीय प्रेम, या कह लें कि एक आदर्श समुदाय, एक पैराडाइज बनाने की जो इंसानी ख्वाहिश होती है और उसके क्या खतरे हो सकते हैं, उसकी पड़ताल करती है।
बिल्कुल। और ये शायद मॉरिसन का सबसे चुनौतीपूर्ण उपन्यास भी है। ये यूटोपिया, वो आदर्श समाज की कल्पना, उससे जुड़े बड़े मुश्किल सवाल खड़े करता है।
जैसे कि क्या हम वाकई एक परफेक्ट स्वर्ग बना सकते हैं, खासकर जब बनाने वाले खुद नाइंसाफी के शिकार रहे हों।
और इसमें पितृसत्ता, मर्दों के दबदबे वाली व्यवस्था का क्या रोल रहता है? उपन्यास इन्हीं सब सवालों के आसपास घूमता है।
और शुरुआत, अरे बाप रे, पहली ही लाइन है, वे पहले श्वेत लड़की को गोली मारते हैं। एकदम से पाठक को हिला कर रख देती है ये लाइन।
हाँ बिल्कुल, एक झटके में कहानी के सबसे हिंसक मोड़ पर पहुंचा देती है। और सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्या हुआ, एक जगह जो पनाह के लिए बनी थी, वो इतनी नफरत और हिंसा का अड्डा कैसे बन गई?
आज हम इसी उलझी हुई कहानी की परतें खोलने की कोशिश करेंगे।
तो चलिए कहानी के दिल में चलते हैं रूबी, वो कस्बा जिसे स्वर्ग बनाने की कोशिश की गई लेकिन जिसकी बुनियाद ही बहिष्कार पर थी।
हाँ, रूबी, ओक्लाहोमा में बसा ये पूरी तरह से अश्वेत लोगों का कस्बा। और इसे बसाया किसने? उन परिवारों ने जिन्हें दूसरे अश्वेत समुदायों ने ही ठुकरा दिया था।
वजह?
उनकी त्वचा का गहरा रंग, वो इसे कहते थे द डिसअलाउविंग। सोचिए कितना गहरा जख्म होगा ये, अपनों से ही ठुकराया जाना। यही अस्वीकृति, ये रिजेक्शन, उनके समुदाय का संस्थापक आघात बन गया, उनकी पहचान का एक कड़वा हिस्सा।
और शायद इसी कड़वे अनुभव ने उन्हें एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए उकसाया जहां उन्हें कोई न ठुकरा सके।
बिल्कुल। पहले उन्होंने हेवन बसाया, और जब वो भी काफी नहीं लगा तो फिर रूबी बसाया। मकसद था एक अभेद्य किला बनाना, बाहरी दुनिया, खासकर श्वेत लोगों के असर से एकदम महफूज।
लेकिन ये किला बना किस चीज पर था?
नस्लीय शुद्धता के विचार पर, अटूट पितृ सत्तात्मक नियंत्रण पर, मर्दों के पूरे कंट्रोल पर, और ईश्वर के कानून की अपनी घड़ी हुई बहुत सख्त व्याख्या पर।
यहाँ के नियम शायद लिखे हुए नहीं थे, है ना?
नहीं, लिखे हुए नहीं थे, पर सबको पता था, अटल थे, तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था।
और ये पितृ सत्ता हर जगह दिखती होगी।
हाँ, रूबी के हर पहलू में। इतिहास कौन लिखेगा, नियम कौन बनाएगा, औरतों की जिंदगी कैसे चलेगी, सब कुछ मर्दों के हाथ में।
और रूबी के बीचों बीच वो ओवन।
हाँ, वो सामुदायिक ओवन, तंदूर, वो सिर्फ रोटी सेकने की जगह नहीं थी, वो जैसे समुदाय की पहचान, उसकी आत्मा का प्रतीक था।
लेकिन उस पर एक शिलालेख भी था जिस पर काफी बहस थी।
बिल्कुल, एक रहस्यमय शिलालेख। कुछ कहते थे लिखा है बीवेयर द फरो ऑफ हिज ब्राउ, उसके, ईश्वर के माथे की शिकन से डरो। तो कुछ कहते थे नहीं, लिखा है बी द फरो ऑफ हिज ब्राउ, तुम खुद वो शिकन बनो।
क्या दिलचस्प बात है, ये तो सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं लगती।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जैसे दो पीढ़ियों, दो विचारधाराओं की लड़ाई बन गई। एक तरफ डर पर आधारित सुरक्षा, पुरानी व्यवस्था को बचाने की सोच, दूसरी तरफ भविष्य की तरफ देखने, खुद अपनी पहचान बनाने की इच्छा।
तो ये ओवन और उसका शिलालेख जैसे रूबी के आदर्शों और उनमें पड़ रही दरारों का आईना बन गया।
एकदम सही कहा। और रूबी की इस सख्त नियमों वाली दुनिया से बिल्कुल उलट, पास में ही एक और जगह थी, कॉन्वेंट।
हाँ, कॉन्वेंट, एक पुराना, थोड़ा अजीब सा दिखने वाला घर।
पहले कभी वो मूल अमेरिकी लड़कियों के लिए कैथोलिक स्कूल हुआ करता था, पर अब जैसे वक्त के साथ वो अनजाने में ही उन औरतों के लिए पनाहगाह बन गया जिन्हें बाहरी दुनिया ने किसी न किसी तरह तोड़ दिया था, जिन्हें कहीं और जगह नहीं मिली।
तो जहां रूबी है नियमों, नियंत्रण और मर्दों की सत्ता का प्रतीक,
वहीं कॉन्वेंट बिल्कुल अलग। वो जैसे औरतों की ऊर्जा, उनकी आज़ादी, उनके जख्मों को भरने की जगह बन गया। वहां कोई सख्त नियम नहीं, कोई मर्दों का कंट्रोल नहीं।
थोड़ी बिखरी हुई अव्यवस्थित जगह शायद।
हाँ, अव्यवस्थित जरूर थी, पर वो उन लोगों का स्वागत करती थी जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। वो एक अलग ही तरह का स्वर्ग था, समावेश का, सबको अपनाने का।
और उपन्यास का जो असली तनाव है वो इन्हीं दोनों दुनियाओं के टकराव से पैदा होता है ना?
हाँ बिल्कुल। रूबी का स्वर्ग जो बहिष्कार पर टिका है और कॉन्वेंट का स्वर्ग जो स्वीकृति पर। इनका आमने सामने आना, इनका टकराना, वो तो होना ही था। और यही टकराव कहानी को उसके दुखद अंत तक ले जाता है।
इस टकराव को समझने के लिए रूबी के जो कर्ता धरता थे उन्हें जानना जरूरी है।
जी।
खासकर वो मॉर्गन भाई।
हाँ, स्टीवर्ड और डीकन डीक मॉर्गन, जुड़वां भाई, रूबी बसाने वाले बुजुर्गों के पोते, शहर के अघोषित नेता और रूबी के पवित्र इतिहास के स्वघोषित रखवाले।
इनमें से स्टीवर्ड ज्यादा सख्त था शायद।
बहुत ज्यादा। स्टीवर्ड मॉर्गन बेहद सख्त और कह सकते हैं बेरहम था। उसे रूबी के तौर तरीकों में जरा सा भी बदलाव बर्दाश्त नहीं था। बाहर से आया कोई भी असर वो शहर के लिए जानलेवा खतरा मानता था।
और कॉन्वेंट की औरतें उसकी नजर में
बुराई का प्रतीक थीं, जो रूबी की पवित्रता भंग कर रही हैं। इसलिए उन्हें खत्म करना वो अपना फर्ज समझता था। कॉन्वेंट पर हमले का मास्टरमाइंड वही था,
जबकि उसका भाई डीकन वो थोड़ा अलग था।
हाँ, डीकन डीप मॉर्गन ज्यादा उलझा हुआ किरदार है। उसके अंदर एक कश्मकश चलती रहती है। एक तरफ तो रूबी के उसूल, भाई के प्रति वफादारी,
लेकिन दूसरी तरफ
उसे अपनी जवानी का एक राज सताता है। कॉन्वेंट की मुखिया कंसुलाटा, उसके साथ उसका गहरा प्रेम संबंध था। वो अतीत, वो प्यार, वो अपराध बोध उसे बार बार कचोटता है। वो जैसे दो पाटों के बीच फंसा हुआ है।
तो ये थे रूबी के संरक्षक जो नियंत्रण चाहते थे। अब बात करते हैं कॉन्वेंट की उन महिलाओं की जिन पर वे नियंत्रण करना चाहते थे।
हाँ, कॉन्वेंट की औरतें जिन्हें रूबी के मर्द अपने लिए खतरा मानने लगते हैं। सबसे पहले हैं कंसुलाटा, जिन्हें कोनी भी कहते हैं,
कॉन्वेंट की मुखिया।
हाँ, सबसे बुजुर्ग सदस्य और एक तरह से सबकी माँ जैसी। जैसा हमने कहा, जवानी में उनका डीकन मॉर्गन से गहरा रिश्ता था। अब वो कॉन्वेंट में आई दूसरी बिखरी हुई औरतों के लिए एक आध्यात्मिक गाइड जैसी बन गई हैं।
और वो उन्हें लाउड ड्रीमिंग सिखाती हैं। ये क्या है?
हाँ, लाउड ड्रीमिंग मतलब जोर से सपने देखना या शायद अपने अंदर के अंधेरे का सामना करना। ये एक तरह की रस्म है जिसमें औरतें मिलकर अपने पुराने जख्मों, अपने डरों का सामना करती हैं, उन्हें एक दूसरे से बांटती हैं।
ये कोई पारंपरिक पूजा पाठ जैसा नहीं है?
नहीं, ये ज्यादा निजी, ज्यादा कच्चा, औरतों पर केंद्रित तरीका है अपने जख्मों से उभरने का।
और कॉन्वेंट में सिर्फ कॉन्सुलाटा नहीं थी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां और भी औरतें थीं, हर एक की अपनी कहानी, अपना दर्द। मेविस एल्ब्राइट थीं, जिसके जुड़वां बच्चों की दुखद मौत हो गई थी और पति के इल्जामों से डरकर वो भाग आई थी। गहरे अपराध बोध में जी रही थी वो।
फिर गीगी।
हाँ, गीगी ग्रेस, एक जवान बेबाक लड़की, अपनी पहचान की तलाश में दुनिया घूमते हुए वहां पहुंची थी। उसकी आजादी, उसका खुलापन रूबी के मर्दों को खास तौर पर खटकता था।
सेनेका भी थी।
हाँ, सेनेका, बचपन में जिसे छोड़ दिया गया था, जिसने बहुत बुरा बर्ताव झेला था। वो खुद को चोट पहुंचाकर, मतलब सेल्फ हार्म करके, अपने अंदर के दर्द से राहत पाने की कोशिश करती थी।
और सबसे छोटी पलास।
पलास डिवाइन, एक अमीर घर की लड़की जो तब भाग आई जब उसे पता चला कि उसकी माँ का उसके बॉयफ्रेंड के साथ ही रिश्ता चल रहा था। ये धोखा उसे तोड़ देता है। ये सब औरतें बाहरी दुनिया की चोट खाई हुई
और कॉन्वेंट में एक दूसरे के साथ रहते हुए जैसे तैसे अपने जख्म भरने की कोशिश कर रही थी।
बिल्कुल, एक अधूरे से बिखरे हुए ढंग से ही सही, पर कोशिश कर रही थी।
लेकिन दूसरी तरफ रूबी का वो स्वर्ग भी वक्त के साथ अंदर से दरकने लगा था। 1970 का दशक आते आते।
हाँ बिल्कुल, वो आदर्श इमारत जो उन्होंने खड़ी की थी उसमें दरारें साफ दिखने लगी थी। वियतनाम युद्ध से लौटे नौजवान अब बुजुर्गों की सत्ता पर सवाल उठाने लगे थे।
वो उस सख्त नियंत्रण को मानने को तैयार नहीं थे।
नहीं, और वो ओवन वाले शिलालेख की बहस, बिवेर बनाम बी द फरो, वो और तेज हो गई। अब ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं रहा, ये रूबी की आत्मा की लड़ाई बन गई, डर में जीना बनाम बदलाव लाना।
और धार्मिक स्तर पर भी तनाव था।
हाँ, शहर के दो पादरियों के बीच, एक रूढ़िवादी रेवरेंट पुलियम जो पुरानी व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे, और दूसरे नए विचारों वाले रेवरेंट रिचर्ड मिसनर जो बदलाव, नागरिक अधिकारों, बाहरी दुनिया से जुड़ने की बात करते थे।
वो जैसे एक उम्मीद थे।
हाँ हाँ, रूबी के बंद दरवाजे खोलने की एक उम्मीद। लेकिन जैसे जैसे रूबी के अंदर की ये परेशानियां बढ़ीं, अजीब सी बीमारियां, बेकाबू नौजवान, पैसे की चिंता, तो शहर के मर्दों ने, खासकर स्टुअर्ट जैसे कट्टर लोगों ने, अपनी नाकामियों और डरों का ठीकरा फोड़ने के लिए एक आसान निशाना ढूंढ लिया।
एक बलि का बकरा।
बिल्कुल, और वो बलि का बकरा बनी कॉन्वेंट की औरतें।
उन्हें दूसरा बाहरी बना दिया गया।
हाँ, उनकी आज़ादी को बच्चलनी कहा गया, उनकी हीलिंग के तरीकों को जादू टोना, उनका वहां होना ही रूबी के मर्दों वाली दुनिया का मजाक उड़ाना माना जाने लगा।
वो रूबी के खूबसूरत नकाब के पीछे की हर कमी, हर दरार के लिए जिम्मेदार ठहरा दी गई।
ये दूसरा बनाने की प्रक्रिया बहुत खतरनाक होती है। स्टुअर्ट और उसके साथियों के लिए कॉन्वेंट को मिटा देना शहर की आत्मा बचाने जैसा बन गया। ये सोच उन्हें अपनी भयानक हिंसा को सही ठहराने का बहाना दे गई।
और दुख की बात यह है कि डीकन मॉर्गन भी अपनी कश्मकश के बावजूद आखिरकार अपने भाई का ही साथ देता है।
हाँ, वो भी उसी तरफ हो लेता है।
और फिर कहानी वहीं आ पहुंचती है जहां से शुरू हुई थी वो हमला।
हाँ, उपन्यास का अंत उसी हिंसक घटना में होता है। 9 हथियारबंद मर्द सुबह होने से पहले अंधेरे में उस घर पर दावा बोलते हैं और एक एक करके उन पांचों औरतों को बेरहमी से मार डालते हैं।
लेकिन मॉरिसन यहाँ एक रहस्य छोड़ जाती हैं।
बिल्कुल, जब पुलिस जांच करने पहुंचती है तो औरतों की लाशें वहां नहीं होती। घर गोलियों से छलनी है, दीवारों पर खून के धब्बे हैं, पर लाशें गायब हैं, जैसे कभी थी ही नहीं, कोई निशान तक नहीं।
ये अस्पष्टता, ये रहस्य क्या करता है?
ये उन औरतों को सिर्फ शिकार होने से कहीं आगे ले जाता है, उन्हें कुछ और बना देता है, शायद मिथकीय। क्या वो भाग निकली या उनका कोई अलौकिक रूपांतरण हो गया? वो जैसे भूत बनकर रूबी को हमेशा सताने लगती हैं।
कहानी के आखिर में ऐसा लगता भी है कि वो अपने प्रियजनों के सामने फिर से आ रही हैं।
हाँ, ऐसे कुछ पल हैं, शायद शांति या माफी के पलों में। और मॉरिसन जिस तरह कहानी कहती हैं, कभी अतीत कभी वर्तमान, वो पाठक को मजबूर करती हैं कि वो इन बिखरे हुए टुकड़ों को खुद जोड़े।
ये शायद इतिहास और याददाश्त की असलियत को दिखाता है।
हाँ, कि सच कभी सीधा नहीं होता, वो हमेशा टुकड़ों में अलग अलग नजरियों से सामने आता है।
चलिए अब उपन्यास के कुछ गहरे संदेशों पर बात करते हैं। सबसे पहला तो शायद यही है, शुद्धता के विचार का खतरा।
हाँ, रूबी का नस्लीय और वैचारिक रूप से शुद्ध रहने का जुनून ही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। मॉरिसन दिखाती है कि बहिष्कार पर बना कोई भी स्वर्ग आखिर में नफरत और हिंसा ही पैदा करता है।
और विडम्बना यह है कि जिस बहिष्कार का दर्द उन्होंने झेला था, वही उन्होंने दूसरों पर थोप दिया।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा मुद्दा है पितृसत्ता की आलोचना। ये उपन्यास दिखाता है कि मर्दों का दबदबा, यहाँ तक कि उत्पीड़ित समुदायों में भी, कैसे अपने ही लोगों, खासकर औरतों के लिए जुल्म का जरिया बन सकता है।
हाँ, रूबी के मर्दों का अपनी औरतों पर और फिर कॉन्वेंट की औरतों पर काबू पाने की कोशिश का नतीजा कितना भयानक होता है।
फिर आघात और उससे उभरने का तरीका। रूबी अपने आघात से निपटने के लिए खुद को काट लेता है, दर्द को दबाता है,
जबकि कॉन्वेंट की औरतें स्वीकार्यता, आपसी सहारे और वो लाउड ड्रीमिंग के जरिए जख्मों का सामना करती हैं, उन्हें बांटती हैं।
बिल्कुल। मॉरिसन शायद कह रही है कि सच्चा उपचार दर्द को छुपाने में नहीं, उसे हिम्मत से देखने में है।
याददाश्त और इतिहास का सवाल भी अहम है। कहानी कौन सुनाता है, किसका सच माना जाता है? रूबी का आधिकारिक इतिहास बनाम वो दबा हुआ सच।
हाँ, व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान कैसे बनती है, कैसे इतिहास गढ़ा जाता है, ये मॉरिसन के पसंदीदा विषय रहे हैं।
आस्था और धर्म की भूमिका भी है, कैसे धर्म नियंत्रण का हथियार बन सकता है जैसे रूबी में,
और कैसे वो मुक्ति का रास्ता भी दिखा सकता है जैसे कॉन्वेंट की उभरती आध्यात्मिकता में,
और आखिर में वो श्वेत लड़की, हमें आखिर तक पता नहीं चलता कि वो कौन थी।
हाँ, मॉरिसन ने जानबूझकर इसे धुंधला रखा है। ये नस्लीय वर्गीकरण पर उनकी गहरी टिप्पणी है। वो शायद दिखा रही हैं कि अंत में हिंसा का असली कारण सिर्फ नस्ल नहीं बल्कि औरतों से नफरत, दूसरे का डर, नियंत्रण खो देने का खौफ था।
उस वक्त उनकी निजी पहचान मायने नहीं रखती थी, सिर्फ उनका अलग होना मायने रखता था।
बिल्कुल, पढ़ने वाले के लिए ये उपन्यास एक बेचैन करने वाला अनुभव है। ये झकझोड़ता है। कॉन्वेंट की औरतों के लिए गहरी हमदर्दी पैदा होती है
और साथ ही रूबी के मर्दों के कामों के पीछे की उलझी वजहों को समझते हुए भी उनकी हिंसा की तस्वीर हिला देती है।
हाँ, ये उपन्यास हमें अपने समुदायों, अपने विश्वासों, अपने अंदर छिपे पूर्वाग्रहों के बारे में मुश्किल सवाल पूछने पर मजबूर करता है।
कैसे नेकी का दावा करने वाले लोग भी क्रूरता कर सकते हैं, कैसे सुरक्षा की तलाश दूसरों के दमन का कारण बन सकती है।
उपन्यास का रहस्यमयी अंत कोई आसान जवाब नहीं देता, पर एक गहरी गूंज छोड़ जाता है, शायद उम्मीद की एक बहुत महीन किरण भी।
हाँ, ये दिखाता है कि प्यार और क्रूरता, पनाह और हिंसा स्वर्ग बनाने की इंसानी कोशिश में हमेशा दुखद रूप से जुड़े रहते हैं।
पैराडाइज हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा की तलाश में बनाया गया कोई भी स्वर्ग अगर बहिष्कार और नियंत्रण की नींव पर खड़ा हो तो वो कितना खतरनाक हो सकता है।
और साथ ही ये भी कि सच्ची सहानुभूति, स्वीकृति और सबको साथ लेकर चलने की ताकत शायद किसी भी दीवार से ज्यादा मजबूत साबित हो सकती है, भले ही उसे अपनाने में कितना भी दर्द क्यों ना हो।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।